नियम आग्रह। नियम दो प्रकार के होते हैं, विधि लक्ष्य नियम और निषेध लक्ष्य नियम। जिन जिन नियमों को कर्तव्य मानकर पालन करने के लिए आदेश दिया गया है उन्हें विधि लक्ष्य नियम कहते हैं, तथा जिन्हें करने के लिए मना किया गया है उन्हें निषेध लक्षण नियम कहते हैं। दोनों प्रकार के नियम ही जीवों के लिए मंगलजनक होते हैं। बद्ध जीव अत्यंत निकृष्ट अवस्था से अतिशय उपाद्य अवस्था प्राप्त करने के योग्य होता है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच और भी बहुत सी अवस्थाएं हैं। प्रत्येक अवस्था ही एक एक क्रम सोपान है। यह क्रम सोपान ही जीवों के लिए एक एक विश्राम स्थल है। प्रत्येक कर्म सोपान पर ही पृथक पृथक विधि निषेध रूप कतिपय नियम निर्धारित किए गए हैं। जीव जिस समय जिस सोपान पर पैर रखकर विश्राम करता है उस समय उसी सोपान के लिए निर्दिष्ट विधि निषेधों का पालन करते करते ऊपर वाले सोपान पर आरूढ़ होने की योग्यता प्राप्त होती है। वैसी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकने पर वे पदच्युत होकर निम्नस्थ सोपान पर उतरने के लिए बाध्य है। इसी का नाम दुर्गति है। उच्च सोपान की प्राप्ति का नाम सदगति है। स्वाधिकारगत निष्ठा गुण है तथा उसे त्याग करना ही दोष है। जिस सोपान पर पैर रखा गया है उस सोपान संबंधी नियमों का यथा योग्य पालन करने का नाम स्वधर्म अथवा स्वाधिकार निष्ठा है। अपने अधिकार के प्रति निष्ठा ही गुण है और अपने अधिकारगत निष्ठा का परित्याग करने का नाम ही दोष है। इसके अतिरिक्त दोष गुण की कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया है, स्वस्व अधिकारे या निष्ठा स गुणा परिकीर्तिता विपर्यस्तु दोष स्यादुभाष रेश निश्चय देश कालादि भावनां वस्तु न मम सत्तम गुण दोषो विधेयते नियमार्थम ही कर्मणाम। श्रीमद्भागवत 11:21-27। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। देश काल और वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उस श्रृंखला प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का उल्लंघन ना होने पाए। इन विधि निषेध आत्मक नियमों को पुनः दो भाग में विभक्त किया जा सकता है, नित्य और नैमित्तिक नियम। नित्य विधि निषेध। जीव विशुद्ध चित वस्तु है। नित्य स्वभाव में अवस्थित रहने के समय विशुद्ध जीवात्मा के लिए जो विधि निषेधात्मक नियमों का विधान होता है उसे नित्य नियम कहते हैं, किंतु वे संसार दशा प्राप्त होकर माया द्वारा दी गई उपाधि द्वारा अपनी सिद्ध अवस्था के विपरीत जिस दूसरी अवस्था को प्राप्त हुए हैं वह अवस्था उपाधिक है। उपाधिक अवस्था नाना प्रकार की होती है, किंतु नित्य अवस्था अद्वय और एक है। नित्य अवस्था में जीवों का प्रेम ही विधि है तथा मत्सरता ही निषेध है। विधि निषेध आत्मक यही नियम जीवों के नित्य स्वभाव के अनुगत होता है। मत्सरता शून्य प्रेममय जीव नित्य रस अर्थात भक्ति अर्थात भगवत भक्ति रस का आश्रय है। रस पांच प्रकार का होने पर भी एक अखंड और चिन्मय तत्व है। उस अवस्था के नियमों का विचार करना यहाँ का विषय नहीं है। यहाँ केवल मात्र ही जान लेना आवश्यक है कि उस अवस्था में जीवों की नित्य स्थिति है। नैमित्तिक विधि निषेध। नैमित्तिक नियम समूह विविध प्रकार के होने पर भी स्थूल लक्षणों को देखते हुए समस्त सोपानों को तीन श्रेणी में विभक्त किया गया है। श्रुति स्मृति और पुराण सभी में कर्म ज्ञान और भक्ति ये स्थूल विभाग दिख पड़ते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए कुछ विधियां और कुछ निषेध निर्दिष्ट हैं। कर्म विभाग में वर्णाश्रम धर्म इसके अनुगत 10 संस्कार तथा अनेक आदि कर्म समूह विधि है। पातक और उपपातक आदि निषेध हैं। ज्ञान विभाग में संन्यास, त्याग, वैराग्य, चित अचित आलोचना विधि है। काम्य कर्म निषिद्ध कर्म और विषयों में आसक्ति निषेध है। भक्ति विभाग में उदासीनता एवं भक्ति के अनुकूल भाव से क्रम, ज्ञान विभाग के विधि निषेधों का पालन एवं उनके द्वारा शरीर यात्रा की निर्वाह करते हुए भगवत अनुशीलन ही विधि है। भगवत वैर्मुख समस्त प्रकार के कर्मों और ज्ञान का त्याग, विषय आसक्ति और अन्य अन्य भक्ति प्रतिकूल सिद्धांतों और क्रियाओं का परित्याग ही इस विभाग में निषेध है। बद्ध जीवों का प्रथम सोपान कर्मकांड। बद्ध जीव जिस समय अवैध जीवन अर्थात अंत्यज्य चरित्र को छोड़कर उन्नत होता है, उस समय वह सबसे पहले कर्मकांड रूप सोपान पर पहुंचता है। इस सोपान में अवस्थित जीव ज्ञान विभाग रूप ऊपर वाले सोपान को लक्ष्य कर निरंतर वर्णाश्रम धर्म का सुष्ठु रूप से पालन करेंगे, यही उनके लिए नियम है। चित अचित आलोचना और अहंकार तत्व का ज्ञान प्राप्त कर जीव को जब तक भौतिक कर्मों के प्रति निर्वेद नहीं होता, तब तक वर्णाश्रम धर्म की निष्ठा का परित्याग करने से उन्हें पाप का भागी बनना पड़ता है। किंतु उक्त प्रकार का निर्वेद जिस समय उपस्थित होता है, उच्च कोटि का अधिकार उपस्थित होकर उसकी कर्म निष्ठाओं को दूर कर देता है। उस समय यदि वे अपने कर्म अधिकार के नियमों के पालन में ही आग्रह रखें तो उसकी उन्नति स्थगित हो जाती है। द्वितीय सोपान ज्ञान कांड। उसी प्रकार ज्ञान विभाग रूप सोपान पर अवस्थित व्यक्ति के लिए ज्ञान में निष्ठा रखना ही नियम है। जब तक भक्ति सोपान के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती, तब तक उन्हें ज्ञान सोपान के लिए निर्दिष्ट नियमों का ठीक ठीक पालन करना चाहिए। भक्ति में अधिकार उत्पन्न होने के साथ ही ज्ञान निष्ठा का परित्याग कर देना चाहिए। यदि ऐसा ना किया जाए तो नियम अग्रदोष द्वारा दूषित होकर उन्नति ना कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत की शिक्षा है, तावत् कर्माणि कुर्वति न निर्विद्यते यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। श्रीमद् भागवत 11:20-9। कर्म के संबंध में जितनी भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से विवेक जात वैराग्य ना हो जाए। यह वैराग्य उस समय तक कार्यकारी रहेगा जब तक भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के प्रति श्रद्धा ना हो जाए। श्रद्धा ही भक्ति का अधिकार तत्व है। यथा तस्मन् मद भक्ति युक्तस्य योगो नो वा मदात्मना ना ज्ञानम ना च वैराग्यम प्रायश्यो भेवेद ही। श्रीमद्भागवत 11:20-31। जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं रहती है। उसका कल्याण तो मेरी भक्ति द्वारा ही हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान और वैराग्य की निष्ठाएँ होने पर ही हृदय में भक्ति की क्रिया सुष्ठु रूप से प्रकाशित होती है। कर्म और ज्ञान की निष्ठा त्याग कर भक्ति निष्ठा को उत्पन्न करना ही कर्तव्य है। कृष्ण प्रेम का मंदिर श्री गोलोक वृंदावन के अति उच्च शिखर पर विराजमान है। वहां तक पहुंचने के लिए 14 लोकमय प्राकृत कर्म कांडीय जगत रूप सोपान को भेद कर वैकुंठ के ऊपरी भाग में उठना पड़ेगा। कर्म और ज्ञान के सोपानों के प्रति निष्ठाओं को कर्मशः परित्याग करने से भक्ति सोपान का अधिकार प्राप्त होता है। भक्ति के सोपानों को अतिक्रम करने पर प्रेम मंदिर का द्वार दिखलाई पड़ता है। तृतीय सोपान भक्ति और उसकी क्रम उन्नति। भक्ति सोपान पर आरूढ़ जीवों के लिए श्रद्धा ही नियम है। सत्संग में भजन करते करते अनर्थों के दूर हो जाने पर वही श्रद्धा निष्ठा के रूप में प्रकाशित होती है। अनर्थ जितना ही अधिक दूर होते हैं, जीव भक्ति सोपान पर उतना ही अधिक उन्नति की ओर अग्रसर होता जाता है। उसकी निष्ठा रुचि के रूप में, रुचि आसक्ति के रूप में तथा आसक्ति भाव के रूप में प्रकाशित होती है। यही भाव रति के रूप में सामग्री की सहायता से रस हो पड़ता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा यथा आत्मा परिमृजतो असो मद पुण्य गाथा श्रवण अभिधनाय तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथा वंजनम संप्रयुक्तम। श्रीमद् भागवत 11:14-26। मेरी परम पावन लीला कथाओं के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व का दर्शन होने लगता है। अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तु को देखने की शक्ति आने लगती है। श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति साम सिंधु नामक ग्रंथ में इस क्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथा असक्ति ततो भावस्तता प्रेमाभूद्यजन्ति साधकनामयं प्रेमनय प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। भक्ति स्वामी सिंधु 1:4-10। साधन भक्ति के चार सोपान हैं, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। इन चारों सोपानों को अतिक्रम करने पर प्रेम के द्वार स्वरूप भाव नामक सोपान पर पहुंचा जाता है। प्रत्येक सोपान में श्रद्धा की अवस्था के अनुसार कुछ कुछ पृथक पृथक नियम हैं। एक एक सोपान को पीछे छोड़ते हुए आगे के सोपान पर चढ़ना होता है। तब पीछे वाले सोपान के लिए निर्दिष्ट नियमों का आदर ना कर अगले सोपान के लिए निर्दिष्ट नियमों का आदर करना पड़ता है। जो ऐसा ना कर पश्चादवर्तती सोपानों के प्रति नियम आग्रह नहीं छोड़ते, उनके लिए वे नियम समूह श्रृंखला बनकर पूर्व सोपान में ही उन्हें आबद्ध रखते हैं, उन्हें अगले सोपानों पर अग्रसर नहीं होने देते। भक्ति मार्ग के समस्त विधि निषेध एक ही प्रधान नियम के अंतर्गत हैं। भक्ति मार्ग के जिन जिन सोपान में जिन जिन नियमों का विधान किया गया है, वे समस्त नियम समूह एक प्रधान साधारण नियम के अंतर्गत हैं। वह साधारण नियम इस प्रकार है, स्मर्तव्य सततव विष्णु विस्मृतव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेध सेरुते यरेव किंकरा। पद्म पुराण उत्तरखंड 42 अध्याय। कृष्ण का निरंतर स्मरण करना चाहिए, इस मूल विधि से शास्त्र की समस्त विधियां प्रादुर्भूत हुई हैं। कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए, इस मूल निषेध से समस्त निषेध नियमों का प्रादुर्भाव हुआ है। इस मूल विधि को स्मरण रखकर साधक पूर्व विधियों की निष्ठाओं को क्रमशः प्रत्याग करते करते आगे की विधि का अवलंबन करेंगे। ऐसा ना होने से वे नियम आग्रह के दोष में पतित होकर ऊर्ध्व गति प्राप्त करने से वंचित रहेंगे। प्रत्येक भक्ति साधक को उक्त बात सर्वदा स्मरण रखनी चाहिए। इस विषय में हरि भक्ति विलास का यह उपदेश है, कृतयंतयानि तु प्राय गृहीणां धनीनां सतां लिखितानि न तु त्यक्त परिग्रह महात्मानां। हरि भक्ति विलास 20 विलास उपसंहार श्लोक। हरि भक्ति विलास में जिन जिन कृतों का समावेश किया गया है, वे सभी प्राय गृही और धनी साधुओं के संबंध में लिखे गए हैं। परम विरक्त त्वक्त परिग्रह महात्मों के संबंध में कोई भी नियम नहीं है। अवश्यम तानि सर्वानि तेषम तादृक्त सिद्धे प्राग पेक्षयानि भक्तिरिहि सदाचारक साधना। हरि भक्ति विलास। यद्यपि त्वक्त परिग्रह परम विरक्त पुरुषों के लिए इस ग्रंथ में एक भी नियम नहीं लिखा गया है, तथापि साधकों को त्यक्त परिग्रह की अवस्था प्राप्त करने के लिए उस अवस्था को प्राप्त हुए परम विरक्त साधु पुरुषों के आचरण ही इस विषय में एकमात्र सदाचार हैं। शरणागति के भेद। श्रद्धा प्राप्त पुरुषों का लक्षण यह है कि वे श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होते हैं। यह शरणागति गृहस्थ और गृह त्यागों की अवस्था भेद के अनुसार दो प्रकार की होती है। हरि भक्ति विलास में उक्त अवस्था को प्राप्त गृह पुरुषों के पालनीय नियमों का संग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त शिव चतुर्दशी आदि व्रत समूह भी इस ग्रंथ में संग्रहित हैं। उनमें से गृह त्यागी पुरुषों के लिए जो उपयोगी हैं, गृह त्यागी शरणागत भक्त उनका पालन करेंगे। अनन्य शरणागत भक्त का लक्षण। जब गृहस्थ और गृह त्यागी दोनों ही साधन विषय में क्रमशः उन्नति करते करते अनन्य शरणागत हो पड़ते हैं, तब इन दोनों के नियम कुछ कुछ पृथक हो पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में साधन में क्रमशः उन्नति होती जाती है तथा श्री कृष्ण की एकांतिक शरणागति उपस्थित होती है। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत का विचार इस प्रकार है। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वा अन्यपेक्षका सलिंगाना श्रमास्तक्तक वा चरेद विधि गोचरः। श्रीमद् भागवत 11:18-28। एकांतिता गतानुतंतु श्री कृष्ण चरणाम भोजयो भक्ति स्वतः प्रवर्तते तद विघ्ने किम व्रतादिवि। हरि भक्ति विलास 20 विलास। नाम एकांत भक्तानाम गुण दोषो दभव गुणा साधुनाम समचित्तानाम बुद्धे परम उपेशयाम। श्रीमद् भागवत 11:20-36। ज्ञान निष्ठ विरक्त और मोक्ष आदि की अपेक्षा ना रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद नहीं है। वह तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेध से परे होकर स्वच्छंद रूप में विचरण करता है। श्री कृष्ण के पाद पद्मों में जिन्होंने एकांतिका प्राप्त कर ली है उनके हृदय में भक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, अर्थात व्रत और नियम आदि की उपेक्षा नहीं रहती। व्रत और नियम आदि उनके लिए विघ्नदायक होते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त का इन विधि निषेधों से होने वाले पुण्य और पापों से कोई संबंध ही नहीं रहता, क्योंकि वह समदर्शी महात्मा तो बुद्धि से परम तत्व को प्राप्त हो चुके होते हैं। एवं एकांतिका नाम प्राय कीर्तनम स्मरणम प्रभो कुर्वतम परम प्रीत्या कृत्यमननम रोचते विहितेश एव नित्येषु प्रवर्तन्ते स्वमहिते इत्यादिकान्तिनां भाति महात्म्य लिखितम हि तथा। हरि भक्ति विलास 20। एकांत शरणागत भक्त प्राय परम प्रीति के साथ कृष्ण कीर्तन और कृष्ण स्मरण करते हैं, अतः निम्न अधिकारी के लिए निर्दिष्ट नियमों में उनकी रुचि नहीं होती। कभी कभी वे स्वेच्छापूर्वक नित्य विधियों के पालन में प्रवृत्त देखे जाते हैं, किंतु उनको कोई नियम बंधन अथवा नियम आग्रह नहीं होता। इसे इसी उपदेशामृत के 8वें श्लोक में कहा गया है। एकांत भक्तों का यही महात्म्य है, अर्थात यदि वे अनन्य कृत्यों को ना भी करें तो उनका किसी प्रकार लाघव नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि उच्च सोपानस्थ महापुरुष निम्नस्थ सोपान के नियमों का जो पालन करते हैं वे अपनी स्वेच्छा से करते हैं। ज्ञान अधिकारी कर्म अधिकार के अंतर्गत वर्णाश्रम का पालन स्वेच्छा से करते हैं। विधि उनको इन कर्मों को करने के लिए बाध्य नहीं करती। भक्ति अधिकारी भी उसी प्रकार कर्म अधिकार अथवा ज्ञान अधिकार के नियमों का पालन किसी कारण से स्वेच्छापूर्वक करते हैं, अर्थात वे उन विधियों और निषेधों के अधीन ना होकर स्वेच्छापूर्वक उनका पालन करते हैं। उसी प्रकार परम उच्च भक्त अधिकारी एकांत भक्त भी कर्म ज्ञान और साधारण साधन भक्ति के नियमों का पालन करते हुए भी नियम आग्रह नहीं कहे जा सकते हैं। वे तो ऐसा करते हुए भी स्वाधीन भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों के एकांत भजन में ही प्रवृत्त रहते हैं। जो साधक नियम आग्रह का प्रत्याग करते हैं और स्वतः प्रवृत्त होकर नियमों का पालन करते हैं, वे अत्यंत शीघ्र ही उन्नति के पथ पर अग्रसर हो पड़ते हैं। नियम आग्रह के संबंध में ठाकुर के उपदेश। उपदेश ये है कि अपने अपने अधिकारगत नियमों का पालन करते करते साधकों को उच्च सोपान का अधिकार प्राप्त होता है। तब उनका पूर्व नियमों के पालन में आग्रह नहीं रहता। साधक मात्र इस उपदेश को सर्वदा स्मरण रखकर श्री कृष्ण स्मरण और कीर्तन लक्षण युक्त भजन के प्रति लक्ष्य रखते हुए क्रम सोपानों का अतिक्रमण करेंगे।